अगली सूरत है रौद, मुस्तकिल सूरतें चल रही थी, बीच में हमने सूरत यूनुस थी, हूद थी, फिर सूरत यूसुफ थी, अब रौद और अगली सूरत फिर इब्राहिम अम्बिया कराम के नाम पे है। तो रौद सूरत यकीन को अहम सूरत होगी, थंडर को कहते हैं, जैसे रात को जो बिजली चमकती है, असल में फरिश्तों की कुछ सिफात और बातों का जिक्र है इसमें। आइए जरा एक ओवरव्यू देखते हैं सूरत रात का। 1 to 16 तौहीदे बारी ताला यानी अल्लाह ताला की तौहीद और मक्की सूरतों का ये आम मजमून होता है। फिर 17 से 26 हक और बातिल की कशमकश, बहुत खूबसूरत तरीके से मिसालें दे के साबित किया गया कि जब किसी मुआशरे में बातिल बहुत फैल जाए और फिर कोई हक वाला आकर हक की दावत देता है तो एकदम रिएक्शन उठता है, और ये बिल्कुल अल्लाह के नबी के दौर में जो हो चुका, मक्का के 13 साल में जो रिएक्शन था वो इसी मिसाल के तहत था। आयत 27 से 43 ईमान बिर रिसालत की बात है। ये सेकंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ मक्की दौर है, यानी मक्का में 3 ही मजमून पढ़ाए गए, तौहीद, रिसाला और ईमान बिल आखिरा। तो आइए देखते हैं सूरत रात की आयतों को क्लोज सर्किट में कि आयत बे आयत हमारे लिए अमल के क्या नुक्ते हैं और क्या उसका मजमून है। पहली आयत, कुरान सरापा हिदायत है। तिलका आयातुल किताब, अल्लाह ने दिया, हक है, सच है, इस पे गौर व फिक्र कीजिए, अल्लाह तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर 2 to 4, 2 से 4, अल्लाह तला की तख्लीक के शाहकार, कहीं रफ़ समावाती बग़ैर या मदिन तो रौनहा, बग़ैर सतूनों के आसमान खड़ा कर दिया। फिर सुमस्त वाल अर्श, अर्श का तस्करा, वसख़र अश्शम्स वल कमर, तुम्हारी ग़ुलामी में, तुम्हारी चाकरी में सूरज और चांद को लगा दिया, यानी ये तुम्हारे सर्वर्स हैं, तुम्हें ये सर्वेंट्स कह लीजिए, सर्व करने वाले। आज आप कहते हैं ना सर्वर डाउन है, तो सूरज तो कभी डाउन नहीं हुआ, चांद तो कभी डाउन नहीं हुआ। कुल्लू यजरी लिया जले मुसम्मा, क्या एको है और क्या उनके अंदर एक सिमिट्री है, हारमनी है, कि एक आता है तो दूसरा चला जाता है, वो उसे इजाज़त लेता है, वो इधर जाता है, कहीं कोई डिसऑर्डर नहीं, हमारी तो कई चीज़ें ओवरलैप होने लग जाती हैं। तो कायनात का डिसिप्लिन दिखाया जा रहा है कि उसकी कायनात पे गौर व फिक्र करोगे तो युदब्बिरुल अम्र से तुम्हें कामों की तदबीर करनी आ जाएगी। बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स बंदा सीखता है जब कायनात के वर्किंग मेथडोलॉजी को समझ जाता है, और फिर आखिर में भी बिलिकाय रब्बिकुम तूकिनून, एंड पे सब ने रब के सामने खड़ा होना है, जवाबदेही उससे होगी। और इसी तरह फिर आगे ज़मीन का फैलाना, मद्दल अर्दा, रवासियान, हारन, फिर फलों की बातें, उनके जोड़ों की बातें, ये भी इस पिछली सदी में डिस्कवर हुआ कि मेल एंड फीमेल फल होते हैं और दरख्तों की भी किस्में होती हैं, पौधों की भी किस्में, कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया। फिर रात पे दिन का आना, युक्षिल लैल नहार, कैसे चादर उड़ा दी जाती है दिन के ऊपर रात की काली चादर, लेकिन इसमें निशानियां सिर्फ वही लेंगे, इन नफी ज़ालिकल आयात लिक़ौमि यतफक्करून, जब तफक्कुर करते हैं तो आपको एकदम फिल अर्दी क़िताउ मुतजावीरातुन, ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े, सब्ज़ रंग की कहीं हल्की गहरी चीज़ें आपको दिखती हैं, आप ट्रेन में बैठिए तो आपको रास्ते में इतने खूबसूरत सीन दिखेंगे, तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप और मैं भी ज़मीन के टुकड़ों की तरह बैठे होते हैं कुरान की महफिलों में, मुख्तलिफ रंग हैं, पानी एक है, अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं युस्क भी माय वाहिद, पानी एक ही पिलाया जाता है, लेकिन किसी के अंदर क्या खूबी उभरती है, कोई अबू बकर सिद्दीक बन के उभरते हैं, कोई फारूक बनते हैं, कोई हैदर करार बनते हैं, कोई गनी बनते हैं, तो अल्लाह के नबी का देना तो सबको एक ही था, लेकिन लेने वालों में चूंकि फ़र्क होता है तो कोई तो बहुत मीठे फल बन जाते हैं, नुफा नुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकुल, और कुछ कड़वे खट्टे कच्चे झड़ के उतरते हैं, कहते हैं सब आ गया, और फिर जब आगे बढ़ाने लगते हैं तो पता नहीं वो क्या समझाते होंगे लोगों को, मुझे तो खौफ आ जाता है, कुछ लोगों की अरबी तक ठीक नहीं होती, लफ्ज़ सही नहीं, मैं नहीं कहती कि आप कारियाँ बन जाएं, लेकिन कुरान की अदायगी तो ठीक हो, मफहूम तो वाज़े ही नहीं हुआ, पढ़ पढ़ के किताबों से जाकर बताना, और कोई एक सवाल कर ले तो अब अपनी इल्म की कमी को छुपाने के लिए 10 बातें करना, बहुत बड़ा फितना है आज उम्मत मुस्लिमा में इल्म के नाम पे, अधूरी कोशिशों पे पूरे नतायज कभी इस उम्मत को नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद देखिए आयत 5 to 7 में ताज्जुब है काफिरों के एतराज़ पे, ताज्जुब क्या था, इन ताज्जुब फाजबुन कौलुहुम आइजा कुन्ना तुराबन, कि मर के मट्टी से कैसे निकलेंगे, इस पे उनको बड़ी हैरत थी। हालांकि आप देखिए कि माँ के पेट से बच्चे का निकलना है कोई काबिले यकीन बात, आजकल आपको भी कहीं ना कहीं से आई होगी, मुझे 2-3 जगह से तो आ चुकी, कि एक बच्चे को बॉटल यानी जो वाटर कह लीजिए, माँ बच्चे के जो पानी की एक लेयर होती है उसको फाड़े बगैर बाहर निकाला, क्योंकि माँ को कोरोना वायरस हो चुका था, कौन करता है, कहाँ ये बच्चा, और अंदर बच्चा मुस्कुरा रहा है उस बॉल में कि उसको पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब माँ के पेट से बच्चे को निकाल सकता है, क्या वो मट्टी में से नहीं निकाल सकता? कल तो मट्टी भी नहीं थी, पानी के एक बूंद से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। चलो अब हड्डियां तो हैं, गली भी, कुछ तो कंपोनेंट थे ना इंसान में मट्टी वाले, तो अगर दोबारा उठा लेगा तो क्या होगा? लेकिन बात यह है कि जब बाप दादा से यही एक बात सुनते जाएं तो बड़ा ही मुश्किल होता है दोबारा उस बात से मुख्तलिफ बात को कबूल करना। तो मक्का वालों की इस चीज़ पे यहाँ बात करके बता दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जिस कौम से पड़ा था उनके अंदर मरने के बाद दोबारा जी उठने का तसव्वुर तक मिट चुका था। हालांकि देखिए, खुद को मुसलमान भी कहते थे और हज़रत इब्राहिम और इस्माइल से नस्बत भी जोड़ते थे। तो इल्म की कमी इस तरह कौमों को बाज़ दफ़ा बंजर कर देती है। फिर आयत 8-10 में अल्लाह ताला के इल्म कामिल का बयान है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद। सारी फीमेल्स के पेटों में क्या है, यानी बच्चा है कि बच्ची है, एक है कि दो हैं, ट्विन्स हैं कि ट्रिपलेट्स हैं, अल्लाह को पता है कब बच्चा पैदा होगा। व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दाद, ये कॉन्ट्रेक्शंस की तरफ इशारा है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले नहीं बताती, माँ को नहीं पता बच्चा पेट में, इसकी बर्थडे क्या होगी, आज हो जाए या एक हफ्ता भी ना, अल्लाह को पता है। इतना इल्म रखने वाला कि आपके मेरे दिल के ऊपर नजर नहीं रखता होगा कि मैं इस काम को किस नीयत से कर रही हूँ। तो हमेशा नीयतों को साफ करके इस जगह पे बैठिए, फिर देखिए बरकतें ही बरकतें होंगी, वरना मुहासबा बहुत सख्त होगा। अगर अभी नीयत ठीक नहीं हुई तो अभी इस काम को करने की भी जरूरत नहीं है। पहले अपनी सलाह कीजिए, अपना तजकिया कीजिए, अपने आप को मजीद निखारिए, तो फिर अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत बहारें भी देगा। फिर आयत 11, अजाब इंसानों के गुनाहों की वजह से आता है। खूबसूरत आयत। इस पे हमने कम अज़ कम पे अब सिर्फ इस आयत की ही तफसीर सुन लीजिए जाके दौरे कुरान में से, कि हमने शायद 10 मिनट के करीब बात की थी कि जब अल्लाह कौमों को देखता है कि वो अपनी हालत नहीं बदलती तो फिर अल्लाह ताला उनको उनके हालात भी नहीं बदलता। इन्ना अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। आज कोरोना और इस तरह के झगड़ों में पड़ने की बजाय पहले अपनी हालत तो देखो कि तुम भी कुछ ज्यादा ही तो नहीं खुल गए थे कि अल्लाह ने तुम्हें बांध के रख दिया। किस जानवर को मालिक बांधता है? उसको तो नहीं बांधता जो बड़े आराम से चलता फिरता रहे अपने ही खाते के अंदर। वो ही है जिसको एक दो बार जाकर हमसायों की जाके खेती में से लाना पड़े। तो जब इंसान बहुत खुल जाता है ना तो अल्लाह को उसको बांधना आता है, और जब अल्लाह पकड़ ले तो अल्लाह की बना के फिर वाइजा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लहू, फिर कोई उसको चेंज करने वाला नहीं है। वमा लहू मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला अपनी पकड़ से हम सबको बचाए। आयत 12-13 ये है जिसमें सूरत रात का नाम छुपा हुआ है। आसमानी बिजली अल्लाह ताला की तस्बीह करती है, यानी ये जो आपको गरज चमक की आवाज़ आती है ना, तो ये फरिश्ते की पुकार होती है। वो युसब्बिहु रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। और ये पढ़ना भी चाहिए जब बिजली चमके, एक हदीस से हमें इसके बारे में पता चलता है। और फिर बिजलियाँ भी गिरती हैं, लेकिन जिस पे अल्लाह चाहता है उस पे गिरती है और बाकियों को कुछ भी नहीं कहती। तो अल्लाह के ऊपर नजरें रख लोगे तो बात तुम्हें समझ आ जाएगी। आयत 14-16, सिर्फ अल्लाह से दुआ करना ही मुफीद है। लहू दावतुल हक, बस अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारेंगे खुद भी शर्मिंदा होंगे, उसको भी शर्मिंदा करेंगे। देखिए, कभी आप किसी से कुछ मांग लेते हैं, 100 रुपये दीजिएगा मैं भी आपको देती हूँ, अब उसके पास नहीं थे, अब वो शर्मिंदा हुआ, ओ एक्सक्यूज़ मी परस घर भूल गई, आज पैसे नहीं पास नहीं। अच्छा, वो भी शर्मिंदा, तो आपको कितनी शर्म आती है? कभी देखा है मैंने क्यों मांगा, सब्र ही कर लेती, अभी ना ही लेती तो अच्छा था। तो याद रखिए, मुशरिक और जिससे मांगा गया शरीक दोनों ही क़यामत के दिन भी शर्मिंदा होंगे। और इधर भी तो जो एक जुमला बड़ा प्यारा सा लिखा होता है छोटे छोटे होटलों में, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें। तो शिर्क करके शर्मिंदा ना हो और शर्मिंदा ना करें, ये है इस आयत का बुनियादी नुक्ता। गैरों से क्यों मांगते हो, तुम्हारे रब के पास क्या नहीं है जो तुमने ना दे। आयत 17-18, हक और बातिल की मिसाल, इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे हिदायत के अंदर, और इसमें अमल के बहुत सारे नुक्ते निकलेंगे कि कैसे अनजल मिनस समा ईमान फसालत औदियतुम बिकदरिहा। हक और बातिल जब किसी माशरे में टकराते हैं तो कैसी झाग और फ्रिक्शन होती है, उसका जिक्र है। 19-24, हक का साथ देने वालों की सिफात, क्या खूबसूरत खूबियां ऐसे लोगों की कि जो आ जाते हैं इस रस्ते में। अल्लज़ीन यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं, फिर वला यनक़ुदूनल मीसा, वादे करके, कमिटमेंट्स करके, एग्रीमेंट्स करके तोड़ नहीं देते। वल्लज़ीन यसिलूना मा अमरल्लाह बिही युसला, और इसी तरह आगे, इसको भी इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिर इसी तरह देखिए आयत 25-26, हक के दुश्मनों का किरदार, यानी जब हक पेश हो किसी मुआशरे में और लोग उसको मिसयूज करें, तो फिर इन लोगों का किरदार कैसा बुरा होता है। वलहुम सूददार, ऐसे लोगों का अंजाम बड़ा बुरा है। आय 27 से 29, दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बस कोई ट्रैंक्लाइजर नहीं, कोई स्लीपिंग पिल्स नहीं है, कोई दुनिया में कॉमेडी ड्रामा ऐसा नहीं जिसको सुनकर आप खिल जाएं, खिलखिला जाएं, देखकर खुश हो जाएं। ये अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, मोमिन को गम आता है तो वो जिक्र शॉप पे जाता है, गैर मोमिन को गम आता है तो लीकर शॉप की तरफ जाता है। तो इस इत्मीनान को लेने के लिए सलाम के पास आना पड़ेगा। आय 30 से 31, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जोई की जा रही है। क्या आपको इतना सताते हैं, आपकी बात नहीं मानते। कभी कभी बहुत प्यार आता है ना माँ को अपनी बेटी पे, और उसके छोटे छोटे बच्चे सारा दिन उसको सताते हैं, तो माँ कहती है मैं अपनी बेटी ले जाऊंगी अगर तुमने इसको सताया तो। वो मासूम जाने और रो जोर से रोना शुरू हो जाती, हम भी साथ जाएंगे। हाँ, ये तो माँ और बच्चे और नानी और नवासों नवासियों की मिसालें हैं ना। यकीन करिए, अल्लाह ताला को कितना प्यार आता होगा अपने नबी पे जब लोग उनको सताते थे। और आज जो हक के लिए निकलें और लोग उन पे बातें छाने और उनको बुरा भला कहें और स्कैंडल्स निकालें, अल्लाह को उस वक्त फिर उनके दिल पे जो गम उतरता है, टूटता है, उसके ऊपर कितना प्यार आता होगा। तो जब दुख जमीन वाले दें तो तसल्लियाँ और दिलासे आसमान से आते हैं। ये है आपके सच और हक पे होने की दलील। 32 से 34, हक के मुखालिफिन का बुरा अंजाम। करिए मुखालफतें जितनी करनी शौक से करें, कौन रोकता है आपको, लेकिन अंजाम बड़ा बुरा है। बोला कदिस्तुख्सिया बिरुसुलिम मिन कबलिक, आपसे पहलों का भी मजाक उड़ाया गया लेकिन मैंने उन काफिरों को ढील दी, फिर उनको पकड़ा। फकई फकाना इकाब, फिर कैसी थी मेरी पकड़। और जब अल्लाह पकड़ता है ना तो चीखें निकल जाती हैं। अल्लाह ना किसी को पकड़े, ना अल्लाह किसी का इंसाफ करे और ना अल्लाह किसी को अजाब दे, फिर तो ज़िंदगी का लुत्फ ख़त्म होता है। ये जो लफ्ज़ अजाब है ना, मिठास को छीनना, अजबन कहते हैं मीठे को, स्वीट। तो अजाब क्या होता है कि ज़िंदगी की मिठास छिन जाए। बस वो औलादें होती हैं वो अजाब बन जाती हैं, माल है अजाब बन गया, घर अजाब बन गया, शोहरत अजाब बन जाती है, लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़ाती ज़िंदगी नहीं रहती। तो दुनिया में हक की मुखालफत का अंजाम अच्छा नहीं है, और आखिरत में जो होगा उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और फिर जन्नत की बातें, आय 35 में, जन्नत मुत्तकियों के लिए है। मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तकून तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी वाकई नाम लिखाना है तो जन्नत में लिखा लो, शर्त यह है कि तकवा का पहले चेक कैश करवाओ। तकवा के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला बंदे पर बड़ी आसानियां करेंगे। अल्लाह रमजान की इन जाती हुई घड़ियों में कूट कूट के तकवा भर दे। ना आंख गलत देखे, ना कान गलत सुने, ना जुबान गलत बोले, ना हाथ गलत करे, पेट में एक हराम का, नाजायज का, शक का, कराहत वाला लुकमा ना जाए। अल्लाह तो हमारे अंदर के हालात जानता है, हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं जो तकवा से टकराती हैं, या अल्लाह उनको दूर कर दे और हमें सीधा साधा साफ सुथरा मोमिन बना दे ताकि हिसाब आसान हो जाए। फिर आय 36 से 40, नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान कशमकश। एक चपकलश थी, ऐसे लगता है रस्सा कशीद की कैफियत थी, तो अल्लाह ताला ने उसी की बात की। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यफ़रिखूना बिमा उन्ज़िला इलैक, एक गिरोह तो बड़ा खुश होता है आपके इस कलाम को नाजिल होता देख कर, लेकिन वमिन अलहज़ाबी मैं युन की रुबाता हूँ, कुछ के दिल बड़े बुगस में चले जाते हैं, वो तो इनकार ही करते हैं। उनको अच्छा इसलिए नहीं लगता कि उन पर तनकीद होगी और उनका मूड ही नहीं है, अभी उनका माइंड सेट नहीं हुआ। आप साफ साफ कह दीजिए कि कुल इन्नमा उमिरतु अन अबुदल्लाह, मुझे तो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म है, मैं तुम्हारी बातों पर अपना दीन तो नहीं बदलता। वला अशरिकु बिही इलैही अदउ व इलैही मआब, चार जुमले हैं। मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, किसी का शरीक नहीं ठहराऊंगा, यानी उसके साथ किसी को नहीं लूंगा, तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी को, जितना मर्जी तुम्हारा रंग रंगीला दीन मजहब हो, मैं नहीं मानता, मुझे तुम्हारे ग्लैमर से कुछ नहीं चाहिए, और मैं इसी की तरफ पुकारूंगा, यानी दावत भी दूंगा और आखिर में जाऊंगा उसके पास। तीन चीजें बंदा मोमिन की जिंदगी का खुलासा है, इसी में जिंदगी खप जाए तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। आयत 41 से 43, मुखालिफी ने हक के लिए धमकियां। मुखालफतें करने वाले आखिर कब तक करेंगे। अल्लाह सुबहान तआला ऐसे लोगों को फिर देते हैं कि अवलम यरौ अन्ना तिलर्द नन कुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। और इसी तरह से सूरत के आखिर तक कि वक़द मकर लजीना मिन कबले फ़लिल्लाहिल मकरु जमीया। तो क्या समझ आया इस सूरत से? पूरी सूरत को के ख़ुलासे में आपको लगा नहीं हक और बातिल की कशमकश? अब चंद चीदा चीदा आयतों पर गौर कर लेते हैं। आयत 11, इज्तमाई फ़ैसले इज्तमाई आमाल की बुनियाद पर होते हैं, यानी लोगों के इज्तमाई फ़ैसले कोई एक बंदा ना करे। वन मैन शो नहीं है इस्लाम में, डिक्टेटरशिप भी नहीं है इस्लाम में, बल्कि अल्लाह ताला की सुन्नत के है। कौम के गुनाहों पे पकड़ता है पूरी कौम को, एक के ऊपर नहीं पकड़ता। कौम की हालत बिगड़ गई, इन अल्लाह अला युगैर मा भी कौम इन हत युगैर मा भी अनफुसिम। ये वही चीज़ है जिसको गालिबन मौलाना हाली ने कुछ इस तरह से कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। फिर इसी तरह से वइज़ा अराद अल्लाह बि कौमिन सूअन फला मरद लहू। कहते ना कि अल्लाह के डाले को अल्लाह ही टाले, जब तक अल्लाह ताला ना टाले मुसीबत जाती नहीं है। तो हकीकत है कि इस आयत की तफसीर सुनिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और अपनी इसलाह करते हैं। कोशिश तो शुरू करें, हालत बदलते जाएं हम अपनी, हालात इंशाल्लाह बदल जाएंगे। फिर 17 आयत, हक और बातिल की मिसाल, बड़ी प्यारी आयत है। अनजल मिनस समाई मान फसालत औदिया तुम बेकदरीहा, उसी ने आसमान से पानी बरसाया। यहाँ पानी से मुराद एक इस्तियारतन वही इलाही है, यानी कुरान पाक। फिर इससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले। हर बंदे का दिल एक वादी है। कुरान मक्का की गलियों में उतरा या मदीना में आया, वही कुरान पाक के लफ्ज अबू बकर ने सुने और वही अबू जहल ने भी सुने होंगे, लेकिन हर अपने वसफ और अपने अंदाजों के मुताबिक ले सका। और जब जोर से पानी गिरा तो फख्त अमलस सही दुजा बदर्रा बिया, फिर नाले पर फूला व झाग आ गया लेदर। और जिस चीज को जेवर या कोई और चीज बनाने के लिए आग में तपाते हैं, इसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। पस झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और वाम मा यन फोन्ना सुफयम कुस, जो लोगों को नफा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहुल अमसाल, टू बी फ्रूटफुल, बी लाइका बी। देखिएगा कि अबू हुरैरा का नाम आज तक क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा हदीसें ली, पहले ली फिर अब दी। इमाम बुखारी का नाम क्यों है? लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इतनी निस्बत कैसे जोड़ते हैं? ये उनकी मेहनतों के फल हैं। याद रखिए, आज इस चंद दिन की जिंदगी में नफा दे जाइए, जो कर सकते हैं कर जाए, इंसानियत के नफे का। अकायद ठीक कर लीजिए, फराइज के पाबंद हो जाए, हराम को निकाल दे, बिदत और सुन्नत का फर्क जान ले। उसके बाद आप लोगों को खाना पका के देंगे तो इंशाल्लाह नफामंद है। आप कपड़े सी देते हैं, आप दीन सिखाते हैं, सीखते हैं, एडमिन बन जाते हैं, किसी जगह आपको एक छोटा सा तार बना के दीन की गाड़ी में लगा दिया जाए, आपके दुनिया में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। इसकी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे टैलेंट को देखे और हमारी शाकिला को जानता, तो वो पहले से ही है। सूरत बनी इसराइल में आज ही सुबह पढ़ा हमने। तो बस करें क्या कि हम अपनी स्किल्स को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपने घर को दे के जाएं। देखिए, सो सो के जीना कोई जिंदगी है, रो रो के जीना कोई जिंदगी है। इसलिए माँ ने पेट में रखा था, इसलिए दूध पिलाया था, इसके लिए इतनी तरबियत की 8-10 साल तक माँ बेचारी सुबह उठ उठ के स्कूलों में भेजती रही। नहीं, कुछ कीजिए। क्या आपको इसलिए किया कि आप ड्रग एडिक्टेड हो जाएं, आप शराबें पी पी के जाएं, आप जिना करें, आप दुनिया में एक बुरी मिसाल बने, चोरियां और डाके करें? ये तो इंसानियत के धब्बे हैं। तो हमेशा नफामंद बनिए, और जो लेंगे ना वही देंगे, ये भी याद रखिए। गाड़ी में जो जाता है ना वही निकलता है। बाकी इसकी तफसीर आप सबीलुल जन्नत सेट में से जाकर ऑनलाइन से सुन सकते हैं। फिर आयत 28, इत्मीनान कल्ब अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब। आज तरसती सिसकती परेशान दुनिया, डिप्रेशन की मारी दुनिया, एंग्जाइटी की परेशान की हुई दुनिया को बता दीजिए कि जिक्र आपको अल्लाह के जिक्र से ही सुकून मिलना। आप ट्रिंकलाइजर्स खा लें, आप शराब खानों में जाएं, नाइट क्लब्स में जाएं, आप वीकेंड घर में आए ना, वर्ल्ड टूर पे चले जाएं, लेकिन दिल खुश ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। आज भी दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह जहाँ कोई जाकर रहे वो बंदा मोमिन का दिल है, कि वहाँ बहुत पीस होगा, इत्मीनान होगा। तो ये थी सूरत अर्रात।